हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल लोलियम का हम श्रवण वर्णन कर रहे थे, और लोलियम का अर्थ है लोभ, तीव्र इच्छा कुछ इकट्ठा करने की, लोभ। और लोभम और लोलियम के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती में कहा था, वह सदा ही रहना, चंचल रहना। तो लोलियम का अगर चंचलता अर्थ लिया कल हमने, तो उसमें मन की चंचलता, बुद्धि की चंचलता। मन की चंचलता क्यों होती है? अति आसक्ति के कारण, और दूसरा अति द्वेष के कारण। तो राग और द्वेष के कारण मन की चंचलता होती है। और बुद्धि की चंचलता क्यों होती है? भौतिक जो बुद्धि की चंचलता है, उसका कारण है झूठा अहंकार। और आध्यात्मिक जो बुद्धि की चंचलता है, वो है आत्मा का सच्चा अहंकार। फिर उसमें भी उत्साह होना चाहिए। तो अब जो लौलियम है, उसका अर्थ अगर हम लोभ करते हैं, तो एक भौतिक है और एक भक्तिमय है। जो भौतिक लोभ है, वो है खाना पीना सोना ये, और दूसरा है कोई चीज जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, ये कल हम कर चुके हैं शायद। और भक्तिमय लोभ जो है कृष्ण की सेवा, कृष्ण का नाम, वैष्णो की सेवा, यह है भक्तिमय लोभ। भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार भक्तिमय लोभ कौन सा है? कृष्ण की सेवा का लोभ हो, कृष्ण नाम जप का लोभ हो, वैष्णो की सेवा का लोभ हो। अगर हम लोलियम का अर्थ इच्छा करते हैं, तो भौतिक इच्छाएं, संसारी इच्छा या स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा, और दूसरी है मुक्ति की इच्छा। सालोक्य, सारिष्टि, सामेपी, सारूप्य, सायुज्य, इन पांचों मुक्तियों की अगर कोई इच्छा करे, तो ये सब लोभ में आता है। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमारे लिए यहां जो लोलियम की परिभाषा लिखी है, उसका हम थोड़ा सा और दर्शन करके फिर आज इस पुस्तक को पूरा करना है। बुद्धि का लोभ, भगवद् विदान ठाकुर कहते हैं बुद्धि जो मन के अच्छे व बुरे वृत्तियों का भेद करती है। बुद्धि का काम क्या है असल में? अंग्रेजी में बुद्धि का काम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। उसका मतलब अच्छे और बुरी मन की वृत्तियों का विश्लेषण करना, उनको समझना, उसमें भेद करती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह बुद्धि का काम है। तो बुद्धि चार प्रकार की हो गई, स्थिर बुद्धि, अस्थिर बुद्धि, भौतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। जो स्थिर बुद्धि है वो समाधि में स्थित है, और ये एक प्रकार बुद्धि का है। जिस ये कौन करते हैं स्थिर बुद्धि? ये स्थिर बुद्धि हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, स्थित धी किम प्रभा, स्थित धी किसको कहते हैं। और अस्थिर बुद्धि जो है ये बहुशाखा है, तब हमारे को भगवत गीता का मंत्र आना चाहिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धियो अविसाई नाम। तो भक्ति से विनोद ठाकुर ने जो बुद्धि का वर्णन किया है, ये भगवत गीता के इस श्लोक के आधार के ऊपर किया है। ये श्लोक दूसरे अध्याय का, मैं समझते 41वां या 42वां या इसी रेंज में होगा। तो एक है स्थिर बुद्धि जो व्यवसायात्मिक बुद्धि है, वो समाधि में है, और दूसरी बहुशाखा है। और बहुशाखा कौन सी है? अनेक प्रकार है। कौन से? कर्म करेगा, योग करेगा, स्वर्ग की प्राप्ति कर की इच्छा है, और भी बहुत सारे। और भक्ति की बुद्धि को है मन के भौतिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि क्या है? तो दो तो हो गए, स्थिर बुद्धि अस्थिर बुद्धि, ये तो साधन युक्त है। ये 41 का परिभाषा है। और भौतिक बुद्धि क्या है? मन के निर्देशन में अच्छे और बुरे का विवेक करना। देखो करना चाहिए बुद्धि को, लेकिन अगर मन कहेगा मुझे अच्छा क्या लगता है बुरा क्या लगता है तो वो तो हो गया मनोरथ। तो मनोरथ वाला नीचे स्तर का भौतिक बुद्धि वाला है, वो मन के स्तर पे होता है। और आध्यात्मिक बुद्धि है आत्मा के निर्देश में अच्छा और बुरा, आत्मा के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, मन के लिए अच्छा बुरा क्या है, यह है भौतिक बुद्धि। आत्मा के लिए अच्छा बुरा क्या है इसको समझ ले कोई, इसमें विवेक करे, तो वो है आध्यात्मिक बुद्धि। तो आध्यात्मिक बुद्धि ये किसके ऊपर हमारा प्रवचन चल रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर का, लौलियम के ऊपर। तो बुद्धि का लौलियम हो गया, और भक्ति विनोद ठाकुर बुद्धि के लौलियम में आगे कहते हैं, एक स्लाइड आगे जाइए, बुद्धि दो के अधीन हो गई, एक मिथ्या अहंकार झूठे अहंकार के अधीन हो गई, और जब शुद्ध अहंकार के, शुद्ध अहंकार ये है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और झूठा अहंकार ये है कि मैं शरीर का स्वामी हूं। तो जब झूठे अहंकार के अधीन बुद्धि वश में हो जाती है तो अस्थिर एवं दूषित बुद्धि होती है। एक तो स्थिर नहीं होगी, भटकती रहेगी, ये अच्छा है वो अच्छा है, ये नहीं ले वो नहीं ले, और दूसरा दूषित बुद्धि होगी जिसमें बुरे विचार आएंगे, और अन्य और उसके कारण बुद्धि का काम है ड्राइवर का, और ड्राइवर को स्टीयरिंग को संभालना है। स्टीयरिंग है मन, उसमें लगाम है मन, और सारथी है बुद्धि। तो उसका मन अनियंत्रण हो जाएगा क्योंकि बुद्धि अस्थिर है और बुद्धि दूषित है, तो नशा किया हुआ है ड्राइवर, तो मन अनियंत्रण, और मन अनियंत्रण होगा तो इंद्रियां, लगाम ढीला पड़ गया, स्टीयरिंग ठीक हाथ में नहीं है, तो पहिया जहां जाए वहां जाए, इंद्रियां जहां जाए वहां जाए, घोड़े। तो इसलिए कार्य क्या करेगा, भक्ति के प्रतिकूल कार्य, भक्ति के विरोधी कार्यों में लग जाएगा। जब शुद्ध अहंकार के अधीन बुद्धि हो जाएगी तो स्थिर और शुद्ध बुद्धि होगी, मन का नियंत्रण होगा, इंद्रियों का नियंत्रण होगा, और भक्ति के लिए अनुकूल भाव उत्पन्न होंगे, भक्ति के मकाम में लगेगा। तो ये बुद्धि की बात चल रही है। अब असल में हम अगर देखते हैं तो ये जो स्लाइड है नेक्स्ट, इसके पास ये हमारे पुस्तक में जहां हमने छोड़ा है वहां से आगे बढ़ना है। तो पहले हम थोड़ा सा पुस्तक को पढ़ के फिर यहां आते हैं। तो हाँ, अपना पुस्तक आपके हाथ में है तो ले लीजिए। इसमें कल हमने यहां तक पढ़ा था, मायावादियों का संघ छोड़ना चाहिए, जो वैष्णव की निंदा करता है उनका छंग छोड़ना चाहिए, फिर भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब जो है अतिहारी है, ये अतिहार की श्रेणी में आते हैं, और जो अपने इच्छाओं को बढ़ाने के लिए विस्तार, मन का विस्तार, इच्छा है जिसकी, ये इच्छा है कि मन का विस्तार करूं, मन मां मेरा बड़ा हो जाए, उसके लिए अष्टंग योगा का सहारा लेता है, या ब्रह्म में लीन होना चाहता है, या भौतिक कोई लाभ चाहता है, ये सब लौलियम में आते हैं। देखो ये लौलियम में भी आए और अत्याहार में भी आए, दोनों में आए हैं, क्यों, यही ऊपर है भुक्ति मुक्ति सिद्धि है, वो नीचे लौलियम में भी है, ऊपर अत्याहार में भी है। इसके बाद जो हमारी स्लाइड ये है, ये यहां से है, आधुनिक जो लड़ाई का वातावरण पूंजीवादियों में, और एक पूंजीवादी मतलब अमेरिका आदि यूरोपियन देश, और दूसरा साम्यवादी रशिया चाइना आदि, इनके बीच में जो ये हमेशा झगड़ा चल रहा है, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ये अत्याहार के लिए कारण है। तो यहां अत्याहार और लोलुपियम दोनों आएगा, ये अत्याहार के कारण है, जो पूंजीवादी है वो अधिक धन कथा करते हैं आवश्यकता से ज्यादा, और जो साम्यवादी है वो उनसे ईर्ष्या करते हैं, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये क्यों भोग कर रहे हैं, ये सारा राष्ट्र की संपत्ति बनाया जाए। परंतु दुर्भाग्य ये है, उन साम्यवादियों को भी पता नहीं है कि समस्या का समाधान क्या है। किस विषय में? धन के विभाजन के विषय में। इसलिए दोनों, अगर पूंजीवादी का धन मिल जाता है साम्यवादी को तो वो उसको भोग में लगाता है, और इस तरीके से ये दोनों सिद्धांत जो है इनके विपरीत कृष्ण भावना का सिद्धांत है। वो कहते सारा धन भगवान श्री कृष्ण का है। अब आपने स्लाइड में देखिए ये बात लिखी है यहां, संपत्ति संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या, इसको ये इस विषय को ये विषय दिया गया है। पूंजीवादी धन मेरा है, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करते हैं, और साम्यवादी कम्युनिस्ट कहते हैं धन राष्ट्र का है, पूंजीवादी की संपत्ति से ईर्ष्या करते हैं और सारे धन का राष्ट्र को करना चाहते हैं फिर भी भोग करेंगे, और तीसरा धन का वितरण है, धन है कृष्ण का। तो ये हमारी स्लाइड इस विषय में है, और इसके नीचे जो लाल लाइन है वो है दोनों अत्याहार के संबंध में उपदेश की अवमानना करते हैं। तो दोनों अत्याहारी हैं, अतः ये आपस में युद्ध करते हैं। धन सामान्यवादों के पास आने से भी समस्या का समाधान नहीं होता होता है, क्योंकि वे भी इस धन का प्रयोग इंद्रियों के लिए करते हैं। तो ये हमारा अब कृष्ण, इसके बाद प्रभुपाद जी हमारे पुस्तक में क्या लिखते हैं, तो किसी समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक ये धन इनमें से किसी के हाथ में होगा। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए दूसरी स्लाइड में उदाहरण है। उदाहरण है कि 100, ये उदाहरण नहीं है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा लिखा है, ये बाद में पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 100 डॉलर का आपके देश में 100 द्रहम का नोट कहीं गिरा हो, 1000 द्रहम का गिरा हो, एक व्यक्ति वहां से गुजरे कहे कि हमारा नहीं है छोड़ देता हूं, ईमानदार है बहुत अच्छा, दूसरा वहां से गुरे उठा के जेब में रखे और जाके घूमे फिरे खाए पिए मौज करे, ये बेईमान है पराया धन चुराया, लेकिन ईमानदार वहां छोड़ के चला गया उसको ये तो पता नहीं है किसका है। एक तीसरा आता है वो कहता है मेरा तो नहीं है, मुझे इसको भोग नहीं करना है, किसका पता करूं, और वो पता करे जिसका है उसको जाके देता है, तो वो ईमानदार भी है और बुद्धिमान भी है। प्रभुपाद जी दो शब्द लिखते हैं कि ऑनेस्ट भी है और वाइज भी है, बुद्धिमान भी है और ईमानदार भी है। तो ऐसे धन है, लक्ष्मीपति है भगवान। आप देखिए ये पूरा तीसरे व्यक्ति का पढ़ के फिर क्या है, तो इसको कहते हैं बुद्धिमान भी है और ईमानदार भी है। अब प्रभुपाद कहते हैं सामान्य रूप से केवल धन को पूंजीवादी से साम्यवादी को दिया जाए ये समस्या का समाधान नहीं है आधुनिक राजनीति में। ये देखा गया है कि साम्यवादी को धन मिलता है वो भी इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, सारा धन विश्व का भगवान श्री कृष्ण का है, मानव हो या और पशु पक्षी हो उन सब का भरण पोषण भगवान करते हैं। जब कोई अपनी आवश्यकता से ज्यादा लेता है तो समझ लो को वो अतिआहार कर रहा है, वो चोर है और उसको दंडित किया जाए। तो धन का, संसार का धन किस काम में आना चाहिए, मानव समाज के भले के लिए, और यही माता प्रकृति का नियम है। हाँ वो थोड़ा डिसकनेक्ट हो गया था, दोबारा कनेक्ट हो रहा है। नेट क्यों, एक सुबह की क्लास 2 घंटे हो गई तो नेट बेचारी लगता है कमजोर हो गई है। कनेक्ट हो रहा है, आपका प्रॉब्लम है कि मेरा प्रॉब्लम है मालूम नहीं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है लेकिन अब कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूं कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हाँ ये और नेटवर्क चेंज किया तो देखते हैं। तो इस ये जो हम पढ़ रहे हैं कि धन जो है प्रकृति ने सबके लिए रखा है, भगवान के सब संतान हैं, तो इसके लिए ये हमारा ईशोपनिषद का पहला मंत्र दिया हुआ है, ईशावासा इदम सर्वम यत्किंचित जगतान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा कृत कस्य स्वित धनम। सब जो भी चर अचर जितना भी संसार में धन है, हाँ जिसको कहते हैं मूवेबल इमूवेबल, जो भी प्रॉपर्टी धन्या वो सब का मालिक भगवान है, और इसलिए जितना आवश्यक है उतना हमको लेना चाहिए, बाकी जो है अपने हमारे हिस्से का बाकी छोड़ देना चाहिए दूसरों के भले के लिए, क्योंकि इसका मालिक हम नहीं है। अब इसके बाद जो अब इसके बाद जो आ रहा है वो है जिसके लिए यहां हमारे पास लिखा है, आदर्श समाज का निर्माण तब हो सकता है जब, अब प्रभुपाद जी ला लिखते हैं, कृष्ण भक्त जो है वो तो जानता है भौतिक जगत क्यों बना है, भगवान की क्या व्यवस्था है, सबकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए जीवन की, और एक दूसरे के चीजों के ऊपर हम जो है जैसे अब देखो यहां लिखा है, ये केवल कृष्णवादी समाज के अनुसार संभव है, जैसे कि ईशोपनिषद में कहा गया है। तो यहां लिखा है हर एक को अपने हिस्से का धन लेना चाहिए जितनी उसकी असली आवश्यकता है, तो सभी शांति से रह सकते हैं और सादा जीवन ऊंच विचार से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि आधुनिक भौतिकवादी जिनको विश्वास नहीं है सादे जीवन और ऊंच विचार के ऊपर, और ये दोनों हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं जो उनको भगवान ने बुद्धि दी है, और उनका एक ही तर्क है कि हमको धन चाहिए, और उसके लिए बहुत से उन्होंने नाम रखे हैं जैसे पूंजीवादी साम्यवादी। बस ये है धन को इकट्ठा करने का झगड़ा, ये भगवान के कानून को में कोई रुचि नहीं रखते हैं, जो असल में हमारा सबसे उत्तम लक्ष्य होना चाहिए। वो अपने असंख्य इच्छाओं को पूर्ति के लिए हमेशा विचंचल रहते हैं, विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, और ये देखा जा सकता है कि कैसे वो अपने दूसरे भाइयों के ऊपर अत्याचार करके उनको दुखी कर रहे हैं। अब यहां लिखा है मानव समाज के अंदर जो ये दोष हैं वो श्रील रूप गोस्वामी ने अत्याहार से जो है संबोधित की है, अत्याहार के माध्यम से सारी शत्रुता एक आदमी की दूसरे आदमी से, आदमी और पशुओं के बीच में सामान्यवादी और पूंजीवादियों के बीच में, और जो भी ऐसा झगड़ा है, शत्रुता है, वो समाप्त हो जाएगी। और आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या और अस्थिरता जो समाज में, उन सब का समाधान हो जाएगा। कैसे? शुद्ध कृष्ण भावना को अगर जगाया जाए, आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली चलाई जाए, और जो शिक्षा कृष्ण भावना अमृत संघ वैज्ञानिक दृष्टि से सबको दे रहा है, कृष्ण भावना अमृत संघ एक आध्यात्मिक पूंजीवादी है और आध्यात्मिक सामान्यवादी संस्था है, और वो संसार में शांति ला सकती है। हर बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए, इन छह दोषों से मुक्त होकर भक्ति के मार्ग से कृष्ण का शरण लेके कृष्ण भावना अमृत संघ में शामिल होना चाहिए। तो यहां लिखा है सारी संपत्ति कृष्ण की है और उनकी सेवा में प्रयोग की जानी चाहिए। अतः हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है कि कृष्ण की संपत्ति का प्रयोग उनके पालन के लिए करें। विश्व की संपत्ति समस्त जीवों के कल्याण के लिए है। ये भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से लाने की कला है, परंतु हमें आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम चोर कहलाते हैं। इस कला के सीखने के लिए एक दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, तब एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ईशावाशा इदम सर्वम इस श्लोक के ऊपर ही आदर्श अर्थात अर्थ व्यवस्था निर्भर है। अब है क्या इसके बाद कोई श्लोक? यहां हमारा पहला श्लोक पूरा होता है। अब हमारा दूसरा तीसरा श्लोक का अब आज शुभारंभ करते हैं। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन चलो वक्त थोड़ा आगे चलते हैं तीसरे श्लोक में। तो दूसरे श्लोक में छह जो दोष हैं उनको फिर आप एक अच्छी तरह से जो है, लोलियम क्या है, जनसंघ क्या है, प्रभुपाद जी की टीका, भक्ति सिद्धांत सरस्वती टीका और भक्ति विनोद की जो हमारे पुस्तक में नहीं है लेकिन यहां दी गई है, तो इन सब को लीजिए। अब हम तीसरे श्लोक को पढ़ लेते हैं आज थोड़ा सा। उत्साह निश्चा धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतो वृत्ति क्षणभिर् भक्ति प्रसिद्ध्यते। ये श्लोक अनुष्टुप छंद में है। उत्साह, उत्साह, निश्चय, निश्चय, धैर्य, धीरज, ये हुआ तीन। तत्त कर्म प्रवर्तना, तत्त कर्म इसका मतलब भक्ति के कर्म, वो कार्य जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और प्रतनाथ का मतलब उनको करना, उसमें प्रवृत्त होना। कौन से कार्य? तत्त कर्म, तत्त मतलब भक्ति संबंधी कार्य, इसका मतलब वेदी साधन भक्ति के कार्यों में लगना, ये हुआ चार। पांचवा है संग त्याग, जैसे हम उसमें पढ़ के आए हैं दोष में भी संग था, और यहां है संग त्याग, वहां क्या था दोष में? अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार प्रयासश्च,
नियमाग्रह,
नियमाग्रह संग त्यागा
त्यागा
अच्छा, तो वो संग वहां भी संग है, वहां संग है और यहाँ संग त्याग है, इसका मतलब दो श्लोकों में संग आया है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आया है। संग त्यागा मतलब बुरे संग का, कृष्ण भक्ति में नहीं है, मायावादी है, इन सब का त्याग करना। और सतोवृत्ति का मतलब सत है भक्त, पूर्व आचार्यों के चरण चिन्हों में चलना, ये अर्थ है सतोवृत्ति का। सत का मतलब है, प्रभुपाद ने लिखा है, हमारे पूर्वज आचार्य, वृत्ति का मतलब उनके चरण चिन्हों में चलना, षडभीर का मतलब ये छे, और भक्ति प्रसिद्ध थे, इससे हमारी भक्ति प्रकृष्टेण रूपेण सिद्ध, मतलब पूर्ण रूप से सफल होगी, सिद्ध होगी। तो यहां श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहला देखिए दो शब्द क्या है आपके हिंदी में, भक्ति हमारे केवल भावनाएं नहीं है, केवल भक्ति न केवल भावनाएं हैं और न ही केवल ऐसे कुछ इमेजिन किया जाए, इमेजिन किया क्या, दो शब्द क्या लिखे हैं, पहला शब्द पढ़िए इसका हिंदी में क्या लिखा है,
प्रभु कौन से वाला उत्साह या आप बोल रहे हैं शुद्ध भक्ति को समग्र करने में छह सिद्धांत अनुकूल होते हैं,
नहीं वो पूरा हो गया, अब परपट परपट में पहला जो है
भक्ति,
हाँ भक्ति क्या है,
भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है,
और जो इसका मतलब है अंतिम जो काल्पनिक उर्मी का मतलब है कि एक आनंद की अनुभूति, अंग्रेजी में एक्सटेसी, भावना आत्मिक चिंतन नहीं है और काल्पनिक ऐसे कोई इमेजिन करें उसे इमेजिनेटिव उर्मी लिखा है, क्या लिखा है,
प्रभु उर्मी लिखा है,
उर्मी का एक्सटेसी का अर्थ है, मतलब ऐसे कोई बस ऐसे मैंने सोचा कि मुझे आनंद आ रहा है, जैसे कि और हिप्पी लोग जो है वो नशा करके कहते थे कि हमें बहुत बड़ा आनंद आ रहा है, तो वो हुआ इमेजिनेटिव। तो ये जो शब्द है ये उर्मी जो है काल्पनिक, ये नशे के नशे ही लोग ऐसे मानते हैं कि बस हमको बड़ा अच्छा लगा, आनंद आ गया। तो भक्ति ये दोनों नहीं है, तो भक्ति क्या है, भक्ति में क्या है, क्या दो लाइनें क्या लिखी है,
प्रभु आगे लिखा है इसकी विशेष शक्ति व्यवहारिक सक्रियता है, श्री रूप गोस्वामी ने
व्यवहारिक, इसको व्यवहारिक सक्रियता है, व्यवहार का मतलब प्रैक्टिकल और एक्टिविटी है, और इट इज सब्सटेंस इज मतलब भक्ति का जो आधार है जिसके ऊपर टिकी है वो है हमको व्यवहारिक रूप से क्रियाशील होना चाहिए। इसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु का जो उत्तम भक्ति का परिभाषा सूत्र का श्लोक है वो दिया हुआ है, अन्य अभिलाषिता शून्यम गर्म कर्म ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल न कृष्णानु भक्तिर अनुशीलनम भक्तिर उत्तम, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या लिखा है, भक्ति क्या है, भक्ति है एक प्रकार का खेती करना, क्या कल्टीवेशन के लिए क्या लिखा है, पहले ट्रांसलेशन है श्लोक की, इस श्लोक की ट्रांसलेशन दी है, उत्तम भक्ति किसको कहते हैं,
भक्ति है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, इस तरह को जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है, इस भक्ति को किसी भी भ्रम प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए।
ये तो हुई डेफिनेशन, इसके बाद क्या, ये है इसकी परिभाषा श्लोक की, उसके बाद क्या है,
भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है,
अनुशीलन है, ये अनुशीलन शब्द जो है इसका मतलब है जैसे खेती करते हैं, खेत को बनाना है, फिर उसमें बीज डालना है, फिर उसमें पौधा ऊपर आए तो घास निकालना है, तो अंग्रेजी में अनुशीलन के लिए कल्टीवेशन है, इसका मतलब बहुत बड़ी क्रिया है। और प्रभुपाद का जैसे हम कहते हैं अनुशीलन, इसका मतलब क्रिया, इसका मतलब अनुशीलन का अर्थ ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके एक जगह बैठ के ध्यान करें, ऐसे तथाकथित योगी सिखाते हैं बस चुप करके बैठ जाओ। ये उनके लिए अच्छा है जिनको भक्ति का अभी तक पता नहीं है, जानकारी नहीं है। इसलिए उनको पहले भौतिक चीजों से विचलित न हो इधर उधर आए, इसलिए थोड़ी देर के लिए उनको कहा था जाता है कि आप आंखें बंद करके बैठो। और ये ध्यान का अर्थ है जितने भी बेकार की बातें हैं उनको रोकना, इसको कहते हैं मन की वृत्तियां जो बाहर जाती हैं उनको रोकना थोड़ी देर के लिए कम से कम। परंतु भक्ति जो है ये ऐसी सारी बेकार की नॉनसेंसिकल मंडेन एक्टिविटीज, क्या लिखा है हिंदी में,
तो हमारा अभिप्राय सक्रियता क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ है ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ हद योगी है। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है, इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने की जाती है।
मतलब ऐसे लोगों को, जैसे हम स्कूल के अंदर कोई बच्चा बहुत शरारती होता है, परेशान करता है, उसको कहते हैं चुप करके खड़े हो जाओ, लेकिन अच्छा बच्चा आया होता है तो उसको कहते हैं ये काम करो वो काम करो। तो ये इसकी परिभाषा ये है कि जो शरारती परेशान करने वाला बच्चा है उसको कहेंगे तुम ऊपर खड़े हो जाओ उधर मुंह करके। तो ये भक्ति ऐसे योगी ऐसे लोगों के लिए योगा है जो परेशान कर रहे हैं उनको चुप करा के बिठाना है। और इसके बाद क्या है, ध्यान का अर्थ है,
ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना।
व्यर्थ के कार्यकलाप, उसको प्रभुपाद अंग्रेज नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज भौतिक नॉनसेंसिकल व्यर्थ, कम से कम थोड़ी। परंतु भक्ति ऐसे सारे व्यर्थ के भौतिक कार्यों को जड़ से उखाड़ देती है। और जब हम प्रहलाद महाराज की शिक्षा के अनुसार भक्ति के कार्य में लगते हैं, और फिर नवदा भक्ति के यहां नव अंग दिए हुए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये नव अंग है, नीचे लिखे हैं सबके नाम। डिवोशनल सर्विस में पहले, भक्ति में पहले क्या करना है, भगवान का नाम सुनना है, भगवान की लीला सुननी है, भगवान की महिमा सुननी है, भगवान की महिमा गानी है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान के चरणों की सेवा करनी है, भगवान के विग्रह की पूजन करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान के सेवक के रूप में काम करना है, भगवान के मित्र के रूप में, और भगवान सब कुछ भगवान को शरणागत करना है। ये नवदा भक्ति का वर्णन है। आपने दूसरी स्लाइड में क्या है देखिए, इसके बाद की स्लाइड लाइए। तो इस स्लाइड में केवल उत्साह की बात कर रहे हैं, उत्साह के बिना हम किसी, अभी उत्साह तक हम आए नहीं है। ये प्रभुपाद जी पहले परिभाषा भक्ति की दे रहे हैं। श्रवण, श्रवण का अर्थ सुनना, ये भक्ति में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति को ये उसका पहला स्तर है। हमको ऐसे जो प्रमाणित अधिकृत व्यक्ति नहीं है उनसे नहीं सुनना चाहिए। अधिकृत व्यक्ति किससे सुनना चाहिए प्रभुपाद जी, भगवत गीता के चौथे अध्याय का श्लोक देते, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शन। गुरु के चरण में जाना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पूछना चाहिए, और उसकी विधि यही है, तब वो हमको दिव्य ज्ञान देगा, जो सत्य उसने देखा है उसका हमको परिचय कराएगा। और आगे मुंडक उपनिषद में भी कहा गया, तद विज्ञान अर्थम स गुरुन मेवा भी गच्छेता, आपको विज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए, तो गुरु के शरण में जाइए। ये केवल कल्पना से नहीं मिलेगा। चेतना महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ये श्लोक शिक्षा में कहा है। ब्रह्मांड ब्रमित कोई भागीवान जीव गुरु प्रसाद है पाए भक्ति लता बीज, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। इस ब्रह्मांड में कई लोग जन्म ले रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं। कोई भाग्यशाली है जिसको कृष्ण की कृपा से गुरु मिलता है। कृष्ण कब कृपा करते हैं, क्यों किसी को गुरु मिला है इसका मतलब कृष्ण की कृपा है, और गुरु की शिक्षा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलता है, और गुरु की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो गुरु क्या कृपा करता है, प्रसाद का अर्थ है कृपा। गुरु कृपा करता है, भक्ति की लता का बीज देता है, और भक्ति की लता का बीज है भक्ति के नियम, भक्ति के साधन के नियम, ये है भक्ति लता का बीज। वो श्रद्धा से लेकर सारे ही भक्त, श्रद्धा बिंदु गुरुदेव दिया, हमारी श्रद्धा को देना, श्रद्धा बढ़ाना शास्त्र में साधनों में, तो साधन जो भक्ति है उनको भक्ति का, हरे कृष्ण मंत्र भक्ति का बीज नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र तो भगवान है साक्षात। भौतिक जगत में जितने जीव हैं वो जेल खाने में जैसे होते हैं, ऐसे उनके पास कोई, हाँ जीव संसार में आए हैं वो अपने स्वभाव से आनंदमय हैं, उनको आनंद चाहिए। वो दुनिया के अंदर ये जो बद ऐसी सुख मिलता है जो दुख में परिवर्तन होता है वो उनको नहीं चाहिए, उससे बचना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं है इससे मुक्त कैसे हो। वो फिर एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, सुख और दुख भोगते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं, और ऐसे जीव, ये प्रभुपाद जी इस श्लोक की परिभाषा कर रहे हैं कि जो भी जीव एक लोक से दूसरे लोक में ऐसे भ्रमण करते हैं। कोई भाग्यशाली है तो भगवान के शुद्ध भक्त के संग में आता है और उससे सुनता है। संग का मतलब है सुनना, भक्त का संग मत का मतलब है भक्त से भगवान की कथा सुनना, कीर्तन सुनना, और फिर भक्ति के नियमों को, फिर भक्ति के रास्ते को अपनाता है, उसमें शुरू हो जाता है। ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त होता है, ऐसा अवसर किसको मिलता है जो जीवन में बहुत गंभीर है और सीरियस है। और कृष्ण भावना अमृत संग मानवता को बड़े स्तर के ऊपर ये सौभाग्य प्राप्त करा रहा है। और भाग्यशाली अगर इस संस्था का भाग लेके भक्ति करें तो तत्काल ही मुक्ति का मार्ग उनके लिए खुल जाएगा। तो एक आप इन सारे श्लोकों में एक चीज लिखते चलिए कि कहां कहां शिला प्रभुपाद ने कृष्ण कांशस कृष्ण भावना अमृत को, इसमें कहते प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या है इस संस्था का। इससे पहले श्लोक में भी उद्देश्य था, इस श्लोक में भी उद्देश्य है, ये सब इकट्ठे करते जाइए, फिर आपका एक निबंध हो जाएगा कृष्ण भावना अमृत संघ का उद्देश्य भक्ति और उपदेशामृत के इन इन श्लोकों के आधार के ऊपर। तो ये आप एक निबंध बनाइए कि कृष्ण भावना अमृत संघ किस उद्देश्य से प्रभुपाद ने स्थापित किया है। जैसे आधुनिक हम देख के आए कि अर्थव्यवस्था की शांतिपूर्वक कैसे की जा सकती है, दूसरे श्लोक में, इस श्लोक में, सब श्लोकों में आप इस एक एक इस विषय को निकाल के और एक निबंध बनाइए। भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के कार्य को करना पड़ेगा गुरुदेव के निर्देश में। भक्ति में सिद्धि गुरुदेव के निर्देश में भक्ति के कार्य करना। अब ये एक शब्द लिखा है जीवन के सब स्तरों के ऊपर, इसका मतलब जन्म के स्तर कौन से है, ब्रह्मचारी हो या ग्रस्त हो, और या जो जो है क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जैसे किसी भी स्तर पे हो, किसी भी वर्ण में हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अपने कार्यों को बिल्कुल संकीर्ण करना पड़ेगा। कृष्ण सर्वव्यापक है, इसलिए कोई चीज कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माया ततम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति न मत स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु अवस्थित। मैं सारे जगत में प्रविष्ट हूं, सब चीजें मेरे ऊपर आश्रित है, सब जीव मेरे ऊपर टिके हुए हैं, वो सब मुझ में है परंतु मैं उनमें ना हूं, नहीं हूं। इसलिए गुरुदेव के निर्देश में हर एक चीज कृष्ण की सेवा के अनुकूल कार्य करने चाहिए। जैसे उदाहरण अब प्रभुपाद जी यहां उदाहरण दे रहे हैं, किसका, जिसके ऊपर प्रभुपाद जी रात को बैठ के भागवत को बोलते थे और उसके अंदर वो रिकॉर्ड हो जाती थी डिक्टाफोन। तो सब चीजें भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। तो भौतिकवादी ऐसे कहते हैं, इन भौतिकवादियों ने ये मशीन बनाई है, ये व्यवसाय के लिए है, कारोबार के लिए है, भौतिक लिखने के लिए है। उनको ये पता नहीं था कि भगवान की सेवा में भी हम इसको लगा लेंगे, परंतु हम इस डिक्टाफोन को, इस रिकॉर्डिंग मशीन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। कृष्ण भावना का साहित्य इसके द्वारा प्रकाशित कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, ये क्यों प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्ण की शक्ति सर्वत्र है, क्या लिखा है यहां, निश्चित रूप से जिसने ये मशीन बनाई वो सब भगवान श्री कृष्ण के ही शक्ति के अंतर्गत है। जो भी इस मशीन के अंदर कल पुर्जे हैं वो सारे के सारे पांच तत्वों से बने हुए हैं, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि। बस बनाने वाले ने अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का उपयोग किया और इस बहुत बड़ी विचित्र मशीन बनाई है उसके बुद्धि से, परंतु सारा सामान तो कृष्ण ने किया, कृष्ण ने पैदा किया है। मत स्थानी सर्वभूतानी, सब मेरे ऊपर आश्रित हैं, सब मेरी शक्ति के ऊपर आश्रित हैं। इसलिए भक्त समझते हैं कोई चीज भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, भगवान की शक्ति है और उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब यहां से उत्साह की परिभाषा शुरू हो रही है, बुद्धि से, ये है परिभाषा उत्साह के शब्द की। प्रयास बुद्धि से किया जाए कृष्ण भावना में, उसको उत्साह कहते हैं। बुद्धि से प्रयास कृष्ण भावना के कार्यों का किया जाए उसको उत्साह कहते हैं। यह उत्साह शब्द की परिभाषा है प्रभुपाद के शब्दों में, और भक्त सही रास्ता निकाल लेते हैं कि सब चीजें भगवान श्री कृष्ण के सेवा में कैसे लगाई जाएं। और यहां ये शब्द आया है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। अपने लिए कोई संसार में आसक्ति नहीं है परंतु कृष्ण की सेवा के लिए सब चीजें लगा सकते हैं। निर्बंध हमारा कोई संसार से कृष्ण संबंध, लेकिन सब कृष्ण से संबंधित है, उस कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो अब प्रभुपाद जी जहां पहले शुरू किया था ध्यान, उसको वापस ला रहे हैं। तो ध्यान केवल मूर्खों की तरह चुप बैठने के लिए नहीं है, सक्रिय होने के लिए है। आध्यात्मिक जीवन के कार्यशैली है, ये ध्यान नहीं है। अब प्रभुपाद जी दूसरे विषय के ऊपर आते हैं। ये हमारे सारे जो हम कार्य करते हैं इसमें हमको धैर्य धारण करना चाहिए। कृष्ण भावना में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब प्रभुपाद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं, मैंने अकेले ने कृष्ण भावना को शुरू किया, कोई लोगों का इसके प्रति भाव नहीं था, कोई सुन नहीं रहे थे, परंतु हमने भक्ति के कार्यों में धैर्य रखा तो धीरे धीरे लोग आने लगे और इसके महत्व को समझने लगे, इस संस्था को समझने लगे। अब तो वो बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। इसलिए हमको धीरज नहीं खोना चाहिए भक्ति के कार्यों में, परंतु गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए और धैर्य से उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अब एक और शब्द लिखते हैं, धैर्य के साथ हमारे अंदर निश्चय भी होना चाहिए। अब धैर्य के लिए उदाहरण दे रहे हैं आप, अब हम ये मेरे ख्याल में ये पैराग्राफ पढ़ते हैं पूरा कर लेते हैं, तो ये निश्चय की परिभाषा बताते हैं। अब कहते हैं उदाहरण क्या दे रहे हैं, और कार्य जब कर रहा है धैर्य से तो किसके ऊपर निर्धारित होना चाहिए, गुरु और कृष्ण के ऊपर, गुरु और कृष्ण के ऊपर निर्धारित हो, उसकी कृपा के ऊपर, गुरु और कृष्ण की कृपा के ऊपर विश्वास रखते हुए, निश्चय रखते हुए कार्य में लगा रहना चाहिए। तो यहां गुरु और कृष्ण की कृपा के ऊपर निश्चय, ये निश्चय शब्द भी आया। अब आगे देखते हैं उदाहरण क्या दे रहे हैं। अब लड़का लड़की का शादी हो गया और कहे कि हमारे को अभी पुत्र पैदा हो जाए, संतान हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन पत्नी पति का शरणागत होगी और विश्वास होगा कि बालक होगा, तो समय आने पे ऐसे होगा, कुछ समय का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ऐसे ही भक्ति हमारे शरणागति के और सेवा के ऊपर निर्भर है और हमारे को इसके ऊपर निश्चय होना चाहिए। और निश्चय क्या है, अवश्य रक्षी वो कृष्ण, कृष्ण हमारी रक्षा निश्चित रूप से करेंगे, ये शरणागति का लक्षण है, और हमारी सहायता करेंगे, हमारी सफलता भक्ति में प्राप्त कराएंगे, इसको कहते हैं निश्चय। तो यहां तक हमने निश्चय को पढ़ा, अब दोबारा मिलेंगे तब यहां से आगे पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा भक्ति विनोद ठाकुर का इस विषय में जो वर्णन है उसका दर्शन करते हैं। हाँ, अब हम आए हैं इस श्लोक में। पहले हमने लिखा था उत्साह के बिना हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। यहां उत्साह का अर्थ है हमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, गुरु के निर्देश में इन कार्यों को, ये ऊपर लिखा था जो पढ़ा था, गुरु के निर्देश में इन कार्यों को कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। उदाहरण डिक्टाफोन, सब चीजें भगवान की। कृष्ण की शक्ति कोई से कोई चीज स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु का उन्हीं के, ये उत्साह के अंतर्गत है। इस जानकारी से कृष्ण भावना अमृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। ये देखो लास्ट लाइन जो है ये उत्साह की परिभाषा है और ये सब उत्साह के अंतर्गत आता है। अब उत्साह के बारे में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, लाइए दूसरा, पहले उत्साह का बताने से पहले कहते निरुत्साह क्या होता है, इसका मतलब उत्साह रहित क्या है। निरुत्साह का मतलब सेवा में लापरवाही, उत्साह नहीं होगा तो सेवा में हम सावधान नहीं होंगे, लापरवाह हो जाएंगे, लापरवाह का असावधान हो जाएंगे। उसके तीन प्रकार हैं, एक निष्क्रियता, कुछ करेंगे नहीं, एक उसका है आलस, पड़े रहेंगे, और दूसरा कारा कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, अब नहीं बाद में करेंगे, टालते रहेंगे। और दूसरा है उदासीनता, असावधानी के कारण। उदासीन का मतलब है कि आए हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, और तीसरा है विरक्ति, नहीं करना है हमको कार्य। ये है ज्ञानियों का, ये जो ज्ञान योगी हैं ये कहते हैं हमें कोई कार्य नहीं करना है। तो निरुत्साह के तीन कारण है, निष्क्रियता, उदासीनता और विरक्ति। और निष्क्रियता में आलस और काम करने में इच्छा नहीं होना, और उदासीन में है असावधानी कार्य करने में। और निश्चय क्या हुआ इसका, निश्चय की परिभाषा क्या है, दूसरे में जाइए क्योंकि निश्चय हमने थोड़ा पढ़ा है। कृष्ण निश्चय, यह है कृष्ण निश्चित मेरा रक्षा करेंगे, कृष्ण रक्षे भी मोरा ए विश्वास, निश्चय। और भक्ति की सफलता के लिए सहायता देंगे, हमने अभी पढ़ा है, यह निश्चय की परिभाषा है, यह निश्चय कहलाता है। निश्चय के बिना समर्पण संभव नहीं है। अब भक्ति विनोद की ठाकुर की टीका है दूसरे पेज में। तो तीन सत्य, ये बहुत मुश्किल है, अभी इतना ही देख लेते हैं फिर पूर्ण आहुति करेंगे। तीन सत्य, इसका मतलब तीन सिद्धांत क्या है, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध का अर्थ क्या है, जीवन का कृष्ण के साथ, जीव का कृष्ण के साथ नित्य संबंध। अभिधेय क्या है, जीव के इस संबंध को समझना और उसके अनुसार कार्य करना, यह है अभिधेय, वो उसको कहते हैं भक्ति। और प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, भगवत धाम लौटना। अब ये तीनों जो सत्य हैं, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है अभी थोड़ा सा, ये 10 मूल तत्वों के ऊपर आधारित है, आधारित है। एक पुस्तक है पूरा भक्ति विनोद ठाकुर का, 10 मूल तत्व। तो ये 10 सत्य क्या हैं, 10 मूल तत्व क्या हैं, इसका दो विभाजन करते हैं। एक है प्रमाण, जैसे वेद है प्रमाण, हम क्या तीन प्रकार का प्रमाण होता है, वेद का प्रमाण, अनुमान का प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो एक है प्रमाण और दूसरा है प्रमेय। प्रमेय क्या है, प्रमेय का अर्थ है नव प्रमेय या वेदों पर आधारित सिद्धांत, वेदों पर आधारित सिद्धांत। और उसके तीन फिर विभाजन है, पहले 7 प्रमेय, वो है संबंध तत्व के अंतर्गत। अब आगे बताएंगे 7 कौन से हैं, वो संबंध जो तत्व है उसके विषय में है। और 8वां तत्व अभिधेय तत्व के संबंध में है, और 9वां तत्व प्रयोजन तत्व से संबंधित है। तो ये जो 10 मूल है ये इन तीन सत्यों के अंतर्गत विभाजित है। तो अब इसके बाद आप प्रमाण का, दूसरे में जाइए, प्रमाण का मतलब ज्ञान का स्रोत, ज्ञान कहां से आता है, प्रमाण का मतलब है ज्ञान कहां से आता है, शास्त्र से आता है, प्रत्यक्ष आंखों से देखा हमने बाजार में जाते हुए कोई चीज आज पड़ा था, प्रत्यक्ष। अनुमान, अंदाजा लगाया धुआं है तो आग होगी, और अन्य और भी कुछ हो सकता है। अपने आप में ये तीनों पूर्ण और अधिकृत नहीं है, केवल शास्त्र प्रमाण ही मुख्य है। तो शास्त्र प्रमाण के अंतर्गत आता है परिपूर्ण एवं अधिकृत ज्ञान का स्रोत है शास्त्र, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त होता है ये। इस ज्ञान प्रमाण को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आमनाय, अमनाय, इसको आमनाय कहते हैं। केवल अमनाय के द्वारा हम नव प्रेमियों, नव प्रमेयों का सबको समझ सकते हैं। अब इसका मतलब है नौ जो प्रमेय है 10 मूल में, उनको समझने के लिए, प्रमाण को छोड़ के बाकी जो 9 प्रमेय है उनको समझने के लिए हमारे को शास्त्र, गुरु और परंपरा, ये तीन चाहिए। और प्रमेय का अर्थ क्या था,
संबंध तत्व के अंतर्गत।
हाँ नहीं इसका अब ये है नव प्रमेय, इसके बाद वाले में है नव प्रमेयों का वर्णन। नव प्रमेय क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमेय पहला है श्री कृष्ण परम ब्रह्म हरि ही एकमात्र आराध्य देव है, ये है पहला प्रमेय। दूसरा प्रमेय है कृष्ण की शक्तियां, श्री कृष्ण की अचिंत्य अनंत शक्तियां हैं। तीसरा प्रमेय है रस, श्री कृष्ण आध्यात्मिक रसों के से पूर्ण है, रस अखिल रस मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति है। चौथा प्रमेय है जीव, जीव असंख्य हैं और कृष्ण के कण रूपी अंश हैं, कण रूपी अंश हैं। पांचवा प्रमेय है बद्ध जीव, जो जीव अपने सुख की खोज में माया के अधीन होता है। और छठा प्रमेय है मुक्त जीव, जो जीव कृष्ण के सुख के लिए कार्यरत रहता है और माया से परे रहता है। ये सातवां अचिंत्य भेद अभेद, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत। तो यहां तक तो है संबंध ज्ञान, पहला सत्य। भगवान श्री कृष्ण अन्य तत्वों से अचिंत्य रूप से एक साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है, उनके साथ भी है और साथ नहीं भी है। अब आठवां जो है वो है अभिधेय, वो है साधन भक्ति, और नवा है प्रयोजन, वो है प्रेम भक्ति। तो प्रमेण प्रमाण प्रमाण पहला तत्व है, उससे प्रमेय को जाना जाएगा। अब इसके बाद ये भक्ति विनोद ठाकुर का किस विषय में हमने ये पढ़ा है?
हरे कृष्ण बाबू।
हाँ जी
प्रभु, हमें पहले इन सब साथियों से संबंध बनाना चाहिए, फिर हम साधन भक्ति।
इसका मतलब साथ है संबंध ज्ञान, मतलब इनका ज्ञान होगा तब भगवान से संबंध होगा। इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये निश्चय के ऊपर ये परिभाषा दे रहे हैं, इतना निश्चय होना चाहिए, ये सब बातें समझ नहीं है। और इसके बाद धैर्य के लिए एक शब्द अपना शास्त्र में हमने पढ़ चुके हैं, भक्त को गुरु के आदेश अनुसार एवं गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर हो रहकर धैर्य पूर्वक कृष्ण भावना अमृत के कार्य संपन्न करने चाहिए। उदाहरण इस्कांश की स्थापना, एक नवविवाहित स्त्री को संतान की अपेक्षा। ये धैर्य के अंतर्गत अपने पुस्तक में दो उदाहरण है और ये धैर्य की परिभाषा है। तो हमने यहां तक पढ़ा है भक्ति विनोद ठाकुर धैर्य के लिए क्या कहते हैं, इतना हम पढ़ लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। देखो भक्ति विनोद ठाकुर धैर्य के लिए कहते हैं, धैर्य का अर्थ है धीर होना, जैसे भगवद गीता में है धीर, धीर का मतलब धीरजवान। अधीर व्यक्ति, अब जो पहले उसका उल्टा शब्द बोलते हैं, अधीर व्यक्ति जो धीरजवान नहीं है वो चंचल होता है, कोई कार्य संपन्न करने में असमर्थ होता है। धीरजवान नहीं है तो कार्य संपन्न नहीं करेगा। धीर के लक्षण वाचो वेगम, धीर के लक्षण क्या है ये हम पहले श्लोक में पढ़ के आए हैं, उसमें धीर शब्द था ना, धीर शब्द उधर था, वाचो वेगम धीर शिष्यत, वो तो धीर वो है। तो धीर के दो अर्थ है, दूसरे में जाइए, धीर के दो अर्थ हैं। पहला धीर का अर्थ है छह वेग दमन करना, उनको कृष्ण में केंद्रित करना, वो छह जो वेग है उनको कृष्ण में केंद्रित करना। और दूसरा धैर्य है भक्ति कार्यों के प्रयोजन को प्राप्त करने में धीरज रखना। समय लगेगा कोई बात नहीं, जब कर रहे हैं 10 साल हो गए कि 15 साल हो गए कोई बात नहीं, करते रहेंगे, एक दिन कृष्ण कृपा करेगा, तो यहां तक आज पढ़ते हैं, अब इसके बाद तत्कर्म प्रतिनाद आएगा, तो ये यहां से आगे हम अगली बार पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई संबंध है? मेरे ख्याल में ये नया है सब्जेक्ट आपके लिए, 10 मूल तत्व। ये भक्ति विनोद ठाकुर का छोरा पुस्तक है, यहाँ तो उसके नाम लिए हैं केवल, उन्होंने वहां इसका विस्तार से वर्णन किया है। तो आज हमने दूसरा श्लोक पूरा किया और तीसरे श्लोक में उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीन का जो है पाठ किया है। हम आगे अब तीन और का पाठ अगले सोमवार को करेंगे। हरे कृष्णा। आपका कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है?
प्रभु, ये अमनाय क्या होता है?
क्या चीज?
अमनाय।
अमनाय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कि गुरु परंपरागत शास्त्रों का अध्ययन किया है। अमनाय गुरु परंपरागत शास्त्रों का अध्ययन गुरु के शरण में रहकर किया है, ये हुआ अमनाय। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब यही नमूना रहेगा, संडे के दिन तो 11:30 बजे और मंडे के दिन 12:05 पे ऐसे कुछ।
नहीं, मंडे और
मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, ठीक है। इनका क्लास सैटरडे को नहीं होता है, लेकिन सैटरडे को अगर आप इसको बदल के सैटरडे करना चाहें तो लेट हो जाए, तो 11:30 हो सकता है। इनका मंडे और सैटरडे क्लास नहीं है। आप विचार करना अगर ये आपको चलता है तो चलेगा।
हाँ प्रभु, ये ठीक है, क्योंकि सैटरडे छुट्टी होती है सबकी, तो फिर कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए।
नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है।